प्राचीन भारत का इतिहास पार्थ सारथी गुप्ता। फर्स्ट अध्याय पुनर्जागरण। नंबर वन, परिभाषा और काल निर्धारण। यदि गहराई से देखा जाए तो पुनर्जागरण एक पूर्णतः नए ऐतिहासिक आंदोलन की बजाय तत्कालीन मानसिक स्थिति को कहीं ज्यादा व्यक्त करता है, लेकिन इस विचार को बिल्कुल हाल ही में मान्यता मिल सकी। एक लंबे अरसे तक विद्वानों में यह मानने का फैशन सा चल पड़ा था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आंदोलन, जो एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था, मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। स्विस इतिहासकार जैकब बुर्कहार्ट की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली, इटली की पुनर्जागरण कालीन सभ्यता के प्रकाशन 1860 के साथ यह मान्यता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई। बड़ी दिलचस्प बात है कि बुर्कहार्ट की पुस्तक पुनर्जागरण के इतिहास लेखन की विभाजक रेखा भी है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही इस सीधे सादे एवं प्रशंसापरक विवेचन को विभिन्न क्षेत्रों जैसे पैन जर्मन विचारकों, फ्रांसीसी राष्ट्रवादियों और 19वीं सदी के स्वच्छतावादियों से चुनौती मिलनी शुरू हो गई। पुनर्जागरण के इतालवी चरण पर जो जरूरत से ज़्यादा बल दिया जा रहा था, उसका ऊपर के सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में विरोध किया। कुछ हद तक उत्तरी आंदोलन का दक्षिणी आंदोलन से अलगाव उत्तर के विद्वानों और बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज था, जो अपनी विशिष्टता और नवीनता के बावजूद यह समझते थे कि उनमें इतालवी लोगों के मुकाबले तीक्ष्णता और नफासत कम थी। 16वीं शताब्दी में भी इटली उत्तर और पश्चिमी यूरोप के सर्वोत्तम विद्वानों को प्रेरित करता रहा। उत्तर के अनेक भागों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इटली में ही बिताया और इतालवी परंपरा की दीक्षा ली। कुछ और मामलों में, जैसे कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, इटली की स्थिति विशिष्ट और अपूर्व थी। नगर राज्यों की स्थापना, पूंजीवादी उद्यम एवं संगठन और बुर्जुआ जीवन मूल्यों की स्थापना ने इतालवी अंतरिप में न सिर्फ पुनर्जागरण मूल्यों को जन्म दिया, बल्कि उन्हें जिलाए रखा और आगे बढ़ाया। दूसरी ओर इतालवी पुनर्जागरण के कुछ एक लक्षण उत्तर में भी मौजूद थे। राजनीतिक यथार्थवाद, क्रूरता, संघर्ष और सत्ता के लिए जी तोड़ कोशिश ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर उत्तरी परिवारों में भी उतने ही मौजूद रहे जितने कि इटली में। मिलान में विस्कोंती की क्रूरता का अच्छा जोड़ा बर्गंडी दरबार में मिलता है। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच कम से कम 4 अंग्रेज राजाओं को गद्दी से उतारा गया और उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें मार डाला, जबकि 5वां लड़ते हुए मारा गया। राजनीतिक यथार्थवाद के नमूने बोर्जा इतालवी नहीं बल्कि स्पेनी थे। इस तरह से देखने पर मैकियावेली भी पूरा इतालवी नहीं लगता। मैकियावेलीवाद के संस्थापक भी इतालवी सिद्ध नहीं होते। सच पूछा जाए तो वह अपने युग का खुला और सच्चा प्रतिनिधि था। सामान्य तुर्कों के हाथों कुस्तुनतुनिया की पराजय की तिथि सन 1453 से यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है, जिसके बाद यूनान के विद्वान शरणार्थी के रूप में इटली गए और जाते समय अपने साथ बहुमूल्य यूनानी साहित्य भी लेते गए, जो यूरोप के लिए दीर्घकाल से लुप्त हो चुका था। इस बात पर आजकल बहुत कम विश्वास किया जाता है, क्योंकि इटली में यूनानी साहित्य 14वीं सदी के अंतिम दशक से ही लोकप्रिय होने लगा था, जबकि इतालवी नव प्लेटोवादियों के आमंत्रण पर मार्सेल काइल सोलरेस जैसे बाइजेंटियाई विद्वानों ने रोम तथा फ्लोरेंस में अपने भाषण दिए थे। साथ ही इस प्रायद्वीप पर और फ्लोरेंस में भी पहली मानववादी अकादमी की स्थापना मसीही साम्राज्य के केंद्र तक तुर्कों के आक्रमण से लगभग 15 पहले 1439 में की गई थी। भ्रमणशील इतालवी विद्वान भी काफ़ी पहले कुस्तुनतुनिया के संपर्क में आ गए थे। उदाहरण के लिए ग्वारिनो द वेरोना वहाँ लगभग 7 1403 से 1409 तक ठहरे थे और फिर अपने व्यक्तिगत संग्रह के लिए लगभग 50 यूनानी तथा लातिनी पांडुलिपियाँ लेकर इटली वापस लौट आए थे। जियोवान्नी अरिस्पा 1413 से 1423 तक वहां ठहर कर लगभग 200 चुनी हुई पांडुलिपियां अपने साथ ले गए थे। इसी प्रकार लैटिन व्याकरण भी पुनर्जागरण की देन नहीं था। असल में यही एकमात्र व्याकरण था जो पिछले 1000 वर्षों से लिखने पढ़ने वालों के बीच प्रचलित था। पाठ्य पुस्तकें भी लगभग वही थी, हालांकि अब उनमें ज़्यादा सूक्ष्मता और विविधता की दरकार थी। अंतिम बात यह है कि यदि नूतन लैटिन पठन पाठन को कोई परिवर्तित विश्व दृष्टिकोण का परिचायक मानता है, तो साथ ही साथ वह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को नज़रअंदाज भी कर रहा होता है जो कि इटली के बाहर पुनर्जागरण में प्रकट हो रहा था। यह था देशी भाषाओं में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। कम से कम इटली के मामले में यह तय है कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण था वह 1453 के पहले ही हो चुका था। सामान्य धारणा के विपरीत यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों के उपलब्धियों का वस्तुतः पुनर्जागरण से बहुत ही कम वास्ता रहा। यूरोप में समुद्र मार्ग का विस्तार मध्यकालीन धर्मयुद्धों को ही एक स्वाभाविक श्रृंखला थी जो ऐसे धार्मिक उत्साह से प्रेरित थी जिनमें राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के साथ साथ व्यावसायिक लाभ उठाने की आकांक्षा भी मौजूद थी। वास्तव में नई विश्व और समुद्री व्यापार मार्गों के प्रभाव को यूरोप में 16वीं शताब्दी के अंत में ही महसूस किया गया। दूसरी ओर इन शानदार साहसी लोगों ने काफ़ी पहले से चली आ रही धाराओं की समाप्ति में भी कोई योग नहीं दिया। पुनः कहीं 17वीं शताब्दी में जाकर यह संभव हुआ कि जॉन लॉक जैसे लेखकों ने विश्व के अन्य भागों में व्याप्त विविध परंपराओं और धर्मों के प्रभाव को प्रस्तुत करते हुए जनता में ईसाई धर्म की सार्वभौमिकता के बारे में जो आस्था और विश्वास था उससे झकझोर दिया। अभी हाल में ऐतिहासिक शोध का आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में जो विस्तार हुआ है उससे विद्वान मध्यकाल से नितांत भिन्न चरण के रूप में पुनर्जागरण की व्याख्या करने के प्रति उदासीन हो गए हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? बुकहार्ट की पुस्तक के प्रकाशन के बाद पर्याप्त लंबे समय तक यह धारणा व्यापक रूप से प्रचलित रही कि यूरोप में पुनर्जागरण तथा भौतिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार जैसे मुद्रा का अच्छा प्रसार, बाजारों का विस्तार, चारों ओर भाषा की भावना साथ साथ अस्तित्व में आए। दूसरे शब्दों में नवीन और समुन्नत कलाकृतियों, साहित्य में सुंदर एवं महान शैली और विशाल किलों तथा गिरजाघरों का निर्माण इटली में सहसा पूंजीवादी उद्यमों के प्रारंभ होने से ही संभव हुआ। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक परिवर्तनों और नए मूल्यों के क्रमिक उभार के बीच निर्विवाद रूप से संबंध था। यदि मुद्रा अर्थतंत्र ने सामंती व्यवस्था को निष्फल और बेकार न कर दिया होता तो उत्तरी और मध्य इटली में नगर राज्यों की स्वतंत्रता को अधिनायकवादी राजतांत्रिक शासन ने यदि जल्दी समाप्त कर दिया होता तथा यूरोप की वाणिज्यवादी गतिविधियों की अपार सफलता ने यदि ठोस बुर्जुआ वर्ग को जन्म न दिया होता तो संभवतः पुनर्जागरण परंपरा का 16वीं-17वीं शताब्दी तक विकास न हुआ होता। जहाँ व्यापक रूप से यह सही हो सकता है, हम कुछ संशोधनवादी इतिहासकारों के नामों जैसे नीदरलैंड के एम पोस्ता, जर्मनी के डब्ल्यू येबल, इटली के आर मेंदो सपारी तथा कार्लो सिपोला और अमेरिका के जे यू नेग और रॉबर्ट लोबेज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1952 से बराबर ये इतिहासकार इस मान्यता को चुनौती देते आ रहे हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति साथ साथ घटित हुई। उनके राय में पुनर्जागरण आर्थिक स्वर्ण युग, बल्कि कहें कि मध्यकालीन सामान्य जीवन स्तर से आधुनिक समृद्धि की ओर संक्रमण को भी प्रकट नहीं करता। इसके विपरीत यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण जुटाए गए हैं कि कम से कम पुनर्जागरण के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 14वीं सदी के अंतिम भाग से 15वीं सदी के आरंभिक दशकों तक की एक खास विशेषता यह थी कि भूमि की कीमतों में था, जमींदार के लाभ में कमी आ गई थी और ब्लैक डेथ 1348 के फौरन बाद यूरोपीय बाजारों में मंदी आ गई थी। स्वयं इटली में ही ऋणों पर 5-8% तक ब्याज की दर स्वेच्छा से स्वीकार की जाती थी जो कि उत्तरवर्ती मध्य युगों में प्रचलित दरों से निश्चित रूप से कम थी। यदि व्यवसायिक सफलता और सांस्कृतिक विकास का पारंपरिक संबंध इतना स्पष्ट है तो जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा था, निर्धन स्पेन के अंतर्गत गोया 1746 से 1828 के कलात्मक उत्कर्ष की या फिर इस तथ्य की व्याख्या करना बड़ा कठिन होगा कि जिनोवा कलात्मक दृष्टि से अन्य देशों में अनजाना क्यों रहा। इन तर्कों के अलावा अब यह भी लगता है कि क्लासिकी विद्वानों के प्रति पुनः आदर भाव का प्रारंभ न तो अकस्मात हुआ था और न वह इतना गहराई था जैसा कि विश्वास किया जाता है। इतिहास में इसी प्रकार के कम से कम दो आंदोलन और हुए हैं। इनमें एक कैरोलिजियाई पुनर्जागरण है जो 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। इसके माध्यम से 5वीं और 6वीं सदी में हुए बर्बर आक्रमणों के बाद, जिनकी वजह से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन एक प्रकार से समाप्त हो गया था, पुनः पहली बार लैटिन का समुचित पठन पाठन शुरू हुआ। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आंदोलन 12वीं शताब्दी का, जिसमें मानवतावादी विचारों का विकास हुआ। पेरिस, बोलोन और ऑक्सफोर्ड के महान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और यूनान के धर्मशास्त्रीय तथा नैतिक ग्रंथों की पुनः खोज हुई। इसी समय गोथिक मेहरावे निर्माण कौशल की पूर्णता की दृष्टि से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची और रोमन कानूनों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया। इसलिए जो तत्व पुनर्जागरण कालीन विद्वानों तथा कलाकारों को अपने पूर्ववर्तियों से अलग करता है, वह केवल यह नहीं है कि इस काल में क्लासिकी व्याकरण, कविता या कला रूपों के प्रति एक नवीन जोश तथा खौफ पैदा हुआ। वास्तव में वह तत्व है इन सभी चीज़ों के प्रति उनका व्यावहारिक तथा मानवीय दृष्टिकोण, जिसे 19वीं सदी की भाषा में मानववाद नाम दिया गया। अवधि निर्धारित करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि उसका ठीक से व्यवहार किया जाए। इस मामले में बुर्कहार्ट की धारणा को पूरा छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पुनर्जागरण के लिए दूसरी कोई मान्य व्याख्या नहीं है, जबकि इस महत्वपूर्ण काल की व्याख्या जरूरी है। खासकर यह तब और भी जरूरी है जब हम इस काल में होने वाले परिवर्तनों को मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसका कारण यह है कि पुनर्जागरण काफ़ी हद तक पुराने और नए प्रगतिशील मूल्यों जैसे मानववाद और अहम का ईसाइत के आत्मत्याग और मध्यम वर्गीय आत्मचेतना का सूक्ष्म सम्मिश्रण था, और चूंकि इसने अपने अतीत से विरासत में बहुत कुछ ग्रहण किया था, अतः हमारे लिए यह उपयुक्त होगा कि उस विरासत की संक्षिप्त रूपरेखा दें और यह देखें कि भविष्य के निर्माण में उसका क्या योगदान रहा।